ओम ग्रंथ सब मिलकर वाणी का उच्चारण करेंगे।
एक परमेश्वर मन माही ध्याओ, एक परमेश्वर मन माही ध्याओ, करम जाल से छूटन पाओ, करम जाल से छूटन पाओ,
करम जाल से
अपार पुरख सुखदाई, अपरम अपार पुरख सुखदाई,
अपरम अपार पुरख सुखदाई, अपरम अपार पुरख सुखदाई,
इसका से मरण सब खेद मिटाई, इसका से मरण सब खेद मिटाई,
इसका से मरण सब खेद मिटाई, इसका से मरण सब खेद मिटाई,
सरब के अंतर रया समाई, सरब के अंतर रया समाई,
सरब के अंतर रया समाई, सरब के अंतर रया समाई,
शबद रतन सुखदाई, आलख शबद रतन सुखदाई,
आलख शबद रतन सुखदाई, आलख शबद रतन सुखदाई,
सत जुगती जेस नाम घियायो, सत जुगती जेस नाम घियायो,
सत जुगती जेस नाम घियायो, सत जुगती जेस नाम
पुरख घर पायो, परम आनंद पुरख घर पायो,
परम आनंद पुरख घर पायो, परम आनंद पुरख घर पायो,
साची भगत से धीरज पाई, साची भगत से धीरज पाई,
साची भगत से धीरज पाई, साची भगत से धीरज पाई,
करम रहित मन लीन समाई, करम रहित मन लीन समाई,
करम रहित
एक परमेश्वर मन माही ध्याओ कर्म जाल से छूट न पाओ। हम सब जानते हैं मन में इच्छा की तरंग उठती है या एक संकल्प उठता है, विचार की तरंग उठती है और उस विचार को मेरी बुद्धि पकड़ लेती है। जैसे किसी के मन में एक तरंग उठी कि आज मैंने बाजार में चाट खाने जाना है और बुद्धि को याद आ जाती है कि उस चाट खाने में कितना स्वाद आता है, कितना अच्छा लगता है, तो बुद्धि की सैंक्शन तुरंत ही मन की उस तरंग को मिल जाती है। यही कहे कि उस इच्छा को पूरी करने की सैंक्शन बुद्धि कर देती है। फिर मैं तैयारी करता हूं और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करता हूं, बाजार जाता हूं, उस वस्तु का सेवन करता हूं, तो मेरी जो जीने की प्रक्रिया है वो यही तो है। इसलिए वाणी कह रही है कि एक परमेश्वर मन माही ध्याओ तिस कर्म जाल से छूटे न पाओ। तो हर तरंग जो मन में उठती है जिसको मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं वो कर्म जाल ही तो है। इस प्रकार से सांसारिक विकास जिसको हम कहते हैं वो कर्म का भयानक जाल है। क्यों भयानक जाल है? ये ऐसा जाल है जिसकी प्रगति निरंतर होती रहती है। इसीलिए हम इसको विकास करके देखते हैं, लेकिन जो भी विश्व के विकसित आदमी है, जो भी हमारी दृष्टि में जो बड़े लोग हैं, आप देखिए कि उनके परिवार से जब भेंट हो जाए किसी की तो पूछो इनको टाइम मिलता है क्या? वो कहेंगे इनको तो हमारे पास, हमारे लिए टाइम नहीं है इनके पास, ये इतने बिजी लोग हैं। लेकिन एक स्थिति इनकी ऐसी आ जाती है, उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि मैंने दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनना है, सबसे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा नाम कमाना है। वो सुख भी भूल जाता है और दुख भी भूल जाता है। एक वहम पाल लेता है कि मैंने बड़ा इंसान बनना है, दुनिया में बड़ा नाम है। उसने पढ़ाई लिखाई की थी, पैसे की कमाई की थी सुखी होने के लिए, लेकिन सुख भोगने का तो उसके पास वक्त ही नहीं बचा। तो एक हवा में हम जी लेते हैं संसारी जीवन, और जिनके पास वो नाम नहीं है, वो स्थिति नहीं है, वो उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए महाजी कहते हैं प्रेम ये सारा संसार का जीवन देखा देखी चलता है, इसके पीछे विचार कोई है ही नहीं। विचार का मतलब होता है सत विचार, और सत विचार कौन सा होता है? जो शास्त्र के द्वारा प्रकट होता है, सतपुरुष के द्वारा प्रकट होता है, वही सत विचार है। इसके अलावा अन्य कोई सत विचार नहीं। सत कहते ही उस सत्ता को है जो हमेशा एक जैसी पूरी सृष्टि में कायम है, जिसके आधार पर सारी सृष्टि चल रही है। ना चंद्रमा में मनुष्य का कोई रोल है, ना सूर्य के चलने में मनुष्य का कोई रोल है, ना धरती के घूमने में कोई मनुष्य का रोल है। धरती पर पानी अवेलेबल है, सब कुछ हमारे जीवन के लिए चीजें उपलब्ध है, इसमें मेरा रोल क्या है? जिस सतपुरुष ने और जिस ईश्वर ने उस विज्ञान को समझाया, ईश्वर के विज्ञान को, और जिसने उस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया, आम व्यक्ति उसकी जरूरत ही महसूस नहीं करता है। जो जान भी लेते हैं कुछ सत्संग के द्वारा उसके बारे में, उसके पश्चात भी वो उस प्रकार से चलने में गंभीर नहीं होते जिस प्रकार से गुरु मार्गदर्शन कर रहा है। अब ये गुरुवाणी ही आपको कह रही है कि एक परमेश्वर मन माही ध्याओ कर्म जाल से छूट न पाओ। तो मैं कर्म जाल में फंसता चला जाता हूं, कर्म जाल मेरा गहरा होता चला जाता है, जिसको मैं प्रगति करके देखता हूं उसको पता ही नहीं। यही तो मेरी मुसीबत का कारण, सारा समय जिंदगी का खा जाता है, सारा मन का चैन खा जाता है। एक स्टूडेंट जो दूसरे को देख ले बड़ा आदमी को ये पढ़ लिख के कितना बड़ा इंसान बन गया, और यदि उसकी नकल करने लगे वो तो उसकी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, पढ़ पढ़ के ही खत्म हो जाएगी, पैसा कमा के ही खत्म हो जाएगी। अब बताइए कि कर्म जाल से छूटने का, ये वासना का इच्छाओं का कर्म जाल है जिसके संस्कार मेरे मन के अंदर बन चुके हैं और उन संस्कारों के कारण मेरे अंदर इच्छा की तरंग उठ रही है और उस इच्छा की तरंग को मैं पकड़कर बुद्धि उसको सैंक्शन कर देती है, बुद्धि उसकी परमिशन दे देती है कि हाँ करो सुख मिलेगा। लेकिन बुद्धि वो सतबुद्धि नहीं है, किसी गुरु के अधीन किसी शास्त्र के अधीन बुद्धि नहीं है, इसलिए बुद्धि संसारी माहौल में संसारी विचारों में बेचैन घूमती रहती है और जिंदगी का जो टाइम है खत्म। रास्ता क्या था कि एक परमेश्वर मन माही ध्याव, मन माही ध्याव का क्या मतलब कि मैं जिस प्रकार मन से संसार को याद करता हूं और उसके अनुसार कर्म करता हूं उसका उपभोग करता हूं तो होता क्या है मन के अंदर उसके संस्कार धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं और ये संस्कार मेरी डेथ के साथ भी खत्म नहीं होते। शरीर की मृत्यु है मन की मृत्यु नहीं है, मन मेरा जैसा मैंने इस जन्म में बनाया वो बच जाता है और मेरे संग ही अर्थात बुद्धि के संग ही यानी कहें जीव के संग ही वो मन अगले शरीर में काम करना शुरू कर देता है। तो इस मन के शोधन के लिए ये सिमरन था, मन के संस्कारों की शुद्धि के लिए ये शोधन था। अब कौन से संस्कार बनाना चाहिए कौन से नहीं बनाना चाहिए इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय शास्त्र करते हैं या गुरुजन करते हैं। जिनको मैं स्वाध्याय करके सीखता हूं या सत्संग के श्रवण से सीखता हूं या गुरु के संग से सीखता हूं, तो वो जो संस्कार हैं उसको सतोगुणी संस्कार कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये मनुष्य जन्म आपको दिया गया है। और मैं कौन से संस्कार बढ़ा रहा हूं, तमोगुणी संस्कार और रजोगुणी संस्कार। पूरा संसार जो विकास की ओर आंख बंद करके चल रहा है और उस विकास के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हो चुके और होने वाले हैं, उस विकास के कारण ही बड़े बड़े देश जो बड़े बुद्धिमान देश कहलाते हैं एक दूसरे को ठग रहे हैं, ऐसी नीतियां बनाते हैं कि हमसे बिना परमिशन के तो आप विकास भी नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी नीतियां बनाते हैं। तो बताइए मनुष्य ही मनुष्य का जब साथी नहीं है और अब तो हम देख रहे हैं कि प्रकृति भी मनुष्य की साथी नहीं है, प्रकृति के झटके भी हमको लगने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने अंधा विकास किया। तो कौन सा संस्कार मुझको बनाना चाहिए, कौन से मैं बना रहा हूं, ये कौन सिखाएगा हमको, संसार तो सिखा नहीं सकता। कि कोई पूर्ण ऋषि पूर्ण गुरु ही जिसको हम अवतार भी कह देते हैं वही हमको सिखा सकते हैं। इसीलिए जब वाणी प्रकट होती है या शास्त्र प्रकट होते हैं तो मनुष्य की प्राइम ड्यूटी है कि उनको सीखने की कोशिश करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें। और मैं सत्संग के प्रति भी इतना लापरवाह हो जाता हूं कि मैं सोचता हूं कि मुझे क्या जरूरत है, मैं सब जानता हूं। तो ये संस्कार बिना करने के नहीं बनते, इसीलिए महाजी कहते थे प्रेमी खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। अब बताइए गुरु लिखकर क्या दे रहा है, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। इसका मतलब मानव जन्म में सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का जो आइटम है वो प्रभु का सिमरन है और सब कुछ जानते बूझते भी मैं गुरु को मानता भी हूं, उनके शास्त्र को भी कहता हूं कि हाँ मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन करनी मेरी कहां खड़ी है इसको मैं नहीं देखता। तो कर्म जाल से छूटे न पाओ, सिमरन जब तक नहीं करोगे कर्म जाल से छूटोगे नहीं आप, क्योंकि संस्कार ही नहीं बनेंगे आप। जितने भी बचपन से लेके आज तक संस्कार बने हैं वो संसारी कर्म करके उसके द्वारा सुख भोगना इंद्रिय भोग भोगना ये संस्कार मेरे अंदर बने, यही तो मनुष्य के अंदर पांच विकार पैदा करते हैं। हमको पता ही नहीं इस बात, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकारों का कैटेगराइजेशन है, पांच कैटेगरी बना दी गई कि भाई सीखना है तो इस मेथड से सीख सकते। तो वाणी निर्णय कर रही है कि पांच विकार महा दुखदायी जले सकल संसार, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार। अब बताइए ये पांच विकार महा दुखदायी हैं, इसीलिए जो देश भी एक अंधा विकास करेगा, जिसको हम कहते हैं कि पैसे वाला विकास, संसाधनों का विकास, जरूरतें पूरी करने के लिए विकास हो, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन विकास करते ही रहो अपनी जिंदगी की आपको होश ही नहीं रही, तो फिर आपका देश कहां जाएगा, आपका संसार कहां जाएगा। इसे तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। आपके अंदर ये पांच विकार प्रबल हो जाएंगे, जो देश भी आगे निकल भी जाएगा वो फिर दूसरों को धमकी देगा, युद्ध करने की धमकी देगा, और जब धमकी बर्दाश्त दूसरे को नहीं होती है तो विश्व युद्ध हो जाता है, देश आपस में झगड़ने लगते हैं। तो जो विकास मैंने सैकड़ों वर्षों में किया वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। इसीलिए ये पांच विकार महादुखदायी हैं, ये ईश्वर का निर्णय है। तो मैं ईश्वर का निर्णय को सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा, और ये पांच विकार के संस्कार मेरे मन में इकट्ठे हो गए। तो बताइए ये कर्म जाल जो मेरा है वो कहां डेवलप हो रहा है, इन विकारों को बढ़ाने के लिए डेवलप हो रहा है। तो मेरा पतन लाजमी है, चाहे मैंने कितना बड़ा मकान बना लिया हो, चाहे कितना बड़ा बिजनेस मैंने खड़ा कर लिया हो, कितने बड़े सुख भोगने के संसाधन मेरे पास हो, लेकिन याद रखिए यदि आपको अपने मन का निरीक्षण करना आता है, जो कि शास्त्र पढ़े बिना आएगा नहीं आप, तो मेरी बुद्धि खुलेगी कैसे। इसलिए यदि आपको निरीक्षण करना आता है तो आप चाहे परिवार आपका कुछ भी क्यों ना करे, आप एज ए इंडिविजुअल बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, चाहे कोई चले ना चले आपको पता है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, मैंने अपना रास्ता जरूर तय करना है, क्योंकि जिंदगी मेरी जाएगी, मौत मैंने फेस करनी है, अगला जन्म भी मेरे संस्कार के हिसाब से तैयार होगा, इसलिए उसका जिम्मेदार दूसरा व्यक्ति नहीं है, मैं खुद हूं। ये सत बुद्धि उसके अंदर आ जाती है, इसलिए संसार कहीं भी जाए वो गुरु के मार्ग पर चलता ही चलता है, उसका विषय नहीं बदलता, क्योंकि बुद्धि का निर्णय हो चुका है, हमारी बुद्धि का निर्णय ही नहीं होता। ऊपर से बात करते रहते हैं कि हाँ प्रभु की भक्ति से चैन मिलता है, सिमरन से चैन मिलता है, लेकिन सत्य मेरे बारे में है मुझे भोग ही अच्छे लगते हैं और उन्हीं के प्रति मेरा अटैचमेंट है, उन्हीं के लिए मैं अपना वक्त सबसे ज्यादा खर्च करता हूं। तो आगे कहते हैं, अपरम अपार पुरख सुखदाई तिसका सिमरन सब खेद मिटे। वो जो परमेश्वर है वो कह रहे हैं कि सुखदाई है, और सुखदाई का मतलब क्या हुआ, तिसका सिमरन सब खेद मिटे, हर प्रकार का दुख तेरे मन से गायब हो जाता है यदि तू सिमरन में परिपक्व है, और सिमरन के रिजल्ट तुझको मिलने लगे हैं। कब की बात, वो जानता है कि कैसे मन के खेद मेरे गायब हो रहे हैं, मेरे मन की चिंता फिक्र गायब हो रही है, जो संसारिक कर्म करने के लिए मैं जूझता रहता था, अब मन करता है कि मैक्सिमम मैं सत्विचार पढ़ू सुनू और प्रभु की याद करूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन उसके मन के अंदर होता रहता है, और धीरे धीरे क्योंकि सत्विचार वो पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, उसकी बुद्धि के निर्णय भी बदलते हैं, इसलिए बुद्धि की सेंशन भी मिल जाती है। संसार का नुकसान वो सहन कर लेगा, सिमरन का नुकसान वो सहन नहीं करेगा, इससे उसके जीवन की प्रायोरिटी ईश्वर भक्ति बन जाती है, संसार नंबर दो पर आ जाता है। इसलिए वो आगे कह रहे हैं, सर्व के अंतर गया समाई आलक शब्द रतन सुखदाई। बताइए ईश्वर कोई सातवें आसमान पर नहीं है, मेरी देह के अंदर मौजूद है, जिस प्रकार मेरा मन मेरी देह के अंदर मौजूद है और उसके लिए मैं जी रहा हूं, उसी प्रकार मेरा ईश्वर भी मेरी देह के अंदर मौजूद है, मैं उसके लिए भी तो जी सकता हूं। आलक शब्द रतन सुखदाई, वो रत्न है, कैसा रत्न है, जिसमें केवल सुख मिलता है। यहां सुख का मतलब इंद्रिय सुख से नहीं है, सुख का मतलब यहां शांति से, चैन से, आनंद से, आनंद उसे कहते हैं जैसे सुख के साथ दुख होता है, द्वंद रूप होता है, संसार की हर चीज द्वंद रूप। लेकिन आनंद उसे कहते हैं जो द्वंद रूप नहीं है, क्योंकि आनंद का संबंध ईश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं, इंद्रिय भोगों के साथ नहीं। इसलिए बुद्धि जब इस आनंद को अर्थात उस ईश्वर को अपने देह के अंदर अनुभव करती है, तब बुद्धि को संतोष वास्तव में आता है, तब उसके अंदर एक तृप्ति आती है, तब वास्तव में वो मन की इच्छाओं को बढ़ाने के बजाय वो जानता है कि मन की इच्छाएं जितनी भी कम हो जाएगी, जितना संसार का चिंतन कम हो जाएगा, उतना ही मैं ईश्वर की नजदीकी हासिल कर रहा हूं। इसलिए वो असल में तो सादा जीवन वो व्यतीत करता है जिसके मन के अंदर इच्छाओं का विवाद है ही नहीं, संकल्पों की शुद्धि हो चुकी है, संस्कारों की शुद्धि हो चुकी है। अब उसके अंदर उसके मन में ऐसे संस्कार बन गए हैं जिनके कारण मन के अंदर भी ईश्वर की याद आती है, स्वाभाविक रूप में याद आती है। उसके सिमरन में मन रस लेना शुरू कर देता है। मेरी ये स्थिति है, जब मन में ये स्थिति हो जाएगी विचार करो तो कर्म की दौड़ आपकी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो सुखदाई रत्न है जो आपके कर्म के खेद को धीरे धीरे मिटाता चला जाता है, कर्म के खेद को धीरे धीरे मिटाता चला जाता है। इसलिए मनुष्य का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो अंतर्यामी ईश्वर की याद करना है। तो कह रही है कि वह आलक शब्द है, शब्द रूप परमेश्वर कहते हैं ना, जिसको हम ओम कह देते हैं, नाद रूप परमेश्वर कह देते हैं, वो है आलक है, उसको देखा नहीं जा सकता, इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसने भी अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करना है उसने इंद्रियों के अनुभव से ऊपर जाना ही होता है। मेरे अंदर सारे अनुभव कहां के हैं, इंद्रियों के अनुभव ही मेरे मन में इकट्ठे हैं, उनके संस्कार। तो आप बताइए यदि मैंने उन संस्कारों में समन के द्वारा परिवर्तन नहीं किया, सत्कर्मों के द्वारा परिवर्तन नहीं किया, तो फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी सत्संग सुन लूं, याद रखिए कि मन के अंदर संसार का जो संसार के जो संस्कार है वही बने रहेंगे और संसार ही मेरे मन में बसा। इसीलिए सिमरन से लापरवाही करनी, अपनी मूल बर्बादी करनी है, ये साधारण बात महाराज ने नहीं लिखी है संत रास। ये राज है कि कितना महत्व मैंने सिमरन को दे रहा है, कि खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। और आगे लिखते हैं सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी, अर्थात मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य था जिसके कारण उसको मनुष्य जन्म दिया गया था उसकी तुमने पूरी की पूरी बर्बादी ही कर दी। इसलिए दोबारा तो मनुष्य जन्म मिलने का अधिकारी भी नहीं रहता है, तेरी ये दुर्गति हो जाती है, इसी शरीर के रहते पशु की योनि में चला जाता है, पक्षी की योनि में चला जाता है, जहां बुद्धि का यूज ही कोई नहीं। तो मैंने इस विज्ञान को सीखना है और आगे बढ़ना है। सत जुगति जिस नाम ध्यायो, परम आनंद प्रक घर पायो। और जिसने उस नाम को अर्थात जैसे कि हमारे पास क्या है, महामंत्र, उसको नाम भी कहते हैं। महामंत्र की युक्ति क्या है, नाम ब्रह्मेति उपासना, नाम को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। ईश्वर को तो मैं जानता नहीं, उसको अनुभव भी नहीं करता, यद्यपि मेरी देह में मौजूद है लेकिन मेरे अनुभव में वो नहीं है। तो इसीलिए प्रभु का संग करूंगा कैसे मैं, इसलिए प्रभु नाम रूप में या मंत्र रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। इसीलिए वो अवतार कैसा होता है, जैसे कि राम है मान लिया, तो हम राम को ईश्वर समझते नहीं समझते, देह तो उनकी भी नाशवान है, देह तो कृष्ण की भी नहीं रही, राम की भी नहीं रही, लेकिन उस देह के द्वारा, गुरु के देह के द्वारा आपको ईश्वर की याद आती है, आपको इस बात का एहसास होता है इस देह से ईश्वर मुझसे सीधी बात कर रहा है। महाजी साकर है प्रेमी, ये खल्लड़ गुरु नहीं है, अपने शरीर को खल्लड़ करे, ये खल्लड़ गुरु नहीं। जब अंदर साधना करेगा, सुमन करेगा, जब अंदर अनुभव होगा तब तो उसको पता लगेगा कि गुरु को मैंने समझा क्या था, गुरु निकला क्या। गुरु नाद रूप परमेश्वर है, शब्द रूप परमेश्वर है, जो मेरे रोम रोम में व्याप्त है,
वो सिमरन के द्वारा प्राप्त होता है। और सिमरन करोगे किसका, इसीलिए वो मंत्र रूप में अवतार लेता है। जैसे महा जी को 13 वर्ष की आयु में महामंत्र के रूप में प्रभु ने अवतार लिया उनके द्वारा, इस महामंत्र के रूप में जो 3 दिन में प्रकट हुआ। तो आप बताइए अवतार क्या होता है, वो लाइव गॉड है, वो चेतन परमेश्वर है। इसीलिए जब मैं पूर्ण गुरु पर विश्वास करके, उसकी वाणी पर, उसके वचन पर विश्वास करके, उसकी बातों पर विश्वास करके अंदर अपने उस मंत्र का जाप करता हूं, उसको ईश्वर जानकर एक नाम गुरु करी बख्शीश पल पल सिमरे सो स्वरूप जगदीश। तो भारी खुद ही कह रहे हैं वो जगदीश अर्थात ईश्वर का, जगत का जो ईश है उसका स्वरूप है। वो लैंग्वेज नहीं है, वो भाषा नहीं है, पढ़ने में वो भाषा है लेकिन सिमरन करने में वो ईश्वर है। इसीलिए मैं उस लाइव गॉड का मंत्र के रूप में अंदर सिमरन करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ, उसकी याद करता हूँ, तो वो परमेश्वर मेरे अंदर प्रकट होते हैं जिसको हम नाद रूप परमेश्वर कहते हैं। उनका बोध मुझको अंदर होता है जो मुझको समाधि तक ले जाते हैं, ईश्वर प्राप्ति तक ले जाते हैं और ईमान जीवन सफल रहता है। ओम गणपति।